नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन के आदेश दिए। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन 6 अक्टूबर तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान तथा नीति निर्माता भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% से और गिरकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि गरीब महिलाएं, युवा और किसान विकसित भारत के विकास प्रक्रिया के सबसे बड़े हितधारक और लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान प्रदान का केंद्र बनकर न केवल भारतीयों बल्कि बाकी दुनिया में समृद्धि लाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। वे आज नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM की 7वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। रक्षा मंत्री ने आईडेक्स प्रौद्योगिकी विकास कोष, अदिति योजना और मंत्रालय से संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें, कैसे हम इम्पोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और धरती मां से जुड़े कई मुद्दों का भी समाधान खोजा जा सकता है। वे आज राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करें।
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। ये जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। लेकिन सभी परिवार, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए कई प्रयास कर रही है।
मुझे ये जानकर पसंद तो हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए मन के लिए बहुत ही उपयोगी है।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन के आदेश दिए हैं। इस टीम में सीबीआई के दो अधिकारी तथा आंध्र प्रदेश पुलिस के दो दो अधिकारी और भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। सीबीआई निदेशक इस जांच का निरीक्षण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि उसे इन आरोपों और प्रत्यारोपों में कुछ भी नहीं मिला और न्यायालय के फैसले को राजनीति के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को शांत करने के लिए यह आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के निवास पर आज सुबह हमला किया गया। आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल में उनके घर पर बम फेंके और रिवॉल्वर से फायरिंग की।
हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का, तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में खत्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है।
हमले के बाद पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल आरएएफ को तैनात किया गया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि हमले में स्थानीय पार्षद का बेटा नमित सिंह शामिल है। उसे पहले भी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। इस चरण में सबसे अधिक मतदान जम्मू जिले के मण विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां पर 81.47% वोट डाले गए। इसके बाद छम्ब विधानसभा क्षेत्र में 80.34% मतदान हुआ। सबसे कम सोपोर विधानसभा क्षेत्र में 45.32% मतदान दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोकर उसे मान्यता प्रदान करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। यह दुर्घटना मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर मिर्जा मुराद के पास एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के टकराने से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता दुनिया का ऐसा एकमात्र मॉडल है जो लोगों के कल्याण के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करता है। वे आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश केवल आर्थिक विकास से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि लोगों का कल्याण सुनिश्चित न हो। भारतीय वायुसेना अपने 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार से बुधवार तक चेन्नई में फ्लाईपास्ट शो का आयोजन करेगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि वायुसेना अपने उपकरणों तथा आपूर्ति श्रृंखला को अच्छी तरह से बनाए रखने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर श्रीलंका की एक दिन की यात्रा पर आज कोलंबो पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने कोलंबो पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि वे श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा राष्ट्रपति अनुरा कुमार राजेसनायक के पदभार ग्रहण करने के बाद किसी विदेश मंत्री की द्वीप राष्ट्र में पहली यात्रा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और पारस्परिक लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धताओं को उजागर करना है। एक दिन की इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति रिसनायक के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात करेंगे। फरवरी में श्री रिसनायक की भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं को आगे ले जाने में आज की बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
इसराइल ने बीते 24 घंटे में लेबनान पर कई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों में 37 लोग मारे गए हैं और 151 घायल हुए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हमलों का बचाव करते हुए हिजबुल्ला पर लेबनान में सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए क्रॉसिंग को पार करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन दावों के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। उधर लेबनान के सीधे संघर्ष में उतरने से घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ चुका है और लेबनान के सैन्य बलों तथा इजरायली सैनिकों के मध्य हुए संघर्ष में लेबनान के 2 सैनिक मारे गए हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिले में वर्षा के कारण कई नए क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आज पटना से दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने लहेरिया सराय स्थित इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री बिरौल गए, वहां श्री कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित सामुदायिक रसोई केंद्र का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूर दराज वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा घरेलू रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।